ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 12, दिल्ली पर आक्रमण। जिस समय राजा अनंगपाल अपना दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को सौंपकर बद्रिकाश्रम तपस्या करने चले गए, उस समय अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पिता के हाथों में था। सोमेश्वर तथा मालवा के राजा में दुश्मनी थी, दुश्मनी किसी कारण से भी हो, परंतु पृथ्वीराज की बढ़ती हुई कीर्ति उसे असहनीय हो रही थी और वह बदला लेने का अवसर देख रहा था। जब उसने देखा कि पृथ्वीराज अजमेर में नहीं रहते तथा उनके दिल्ली में रहने के कारण उनकी बहुत सारी सेना तथा अनेक वीर सामंत भी अजमेर में नहीं रहते हैं, तब उसने अपने अधीन राजाओं को अपनी सहायता के लिए इकट्ठा करके अचानक अजमेर पर आक्रमण कर दिया। हम पहले ही बता चुके हैं कि सोमेश्वर जी चौहान शांतिप्रिय मनुष्य थे। एकाएक इस नई मुसीबत को देखकर वे घबरा गए, परंतु अब घबराने से कोई फायदा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने सामंतों से सलाह करके एक रात के समय, जबकि मालवा के राजा यादव राय की सेना चंबल पार करके वरवास नामक स्थान में पड़ाव डाले हुई थी, उन पर आक्रमण कर दिया। यादव राय की सेना इस समय असावधान थी, क्योंकि उन दिनों रात के समय युद्ध नहीं होता था। यादव राय की सेना लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने लगी और उसे सोमेश्वर जी के सिपाहियों ने पकड़ लिया। यादव राय युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे। सोमेश्वर जी ने उनका इलाज करवाया और बहुत आराम से लगभग एक महीना अपने राज्य में रखकर फिर उन्हें छोड़ दिया। इधर अजमेर में तो यह हुआ, उधर शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज का दमन करने के लिए शस्त्र युद्ध के बदले कूटनीति युद्ध शुरू कर दिया। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज के शासन में उसकी दिल्ली की प्रजा सुखी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अनंगपाल से जाकर फरियाद की कि आप अपना राज्य एक अयोग्य पुरुष के हाथों में सौंप कर चले आए हैं, वह प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है और आपकी प्रजा पीड़ित हो रही है, इसीलिए आप फिर दिल्ली चलकर शासन का भार अपने हाथों में लीजिए। पृथ्वीराज के शासन में उसकी प्रजा के दुखी होने का समाचार मिलने का यह पहला अवसर था। संभव है कि यह शहाबुद्दीन की चाल हो और उसके पक्षपाती धर्मायन ने कुछ मनुष्यों को भड़काकर यह काम कराया हो। कुछ भी हो, चाल काम कर गई और अनंगपाल को प्रजा की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य छोड़ देने के लिए पत्र लिखा, परंतु मिला हुआ राज्य क्या कोई आसानी से ही छोड़ देता है। पृथ्वीराज को भी पता चल गया कि किस कारण से वे अपना राज्य मांग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजा अनंगपाल के तपस्वी बन जाने पर भी अब तक उनके पक्षपातियों की कमी नहीं थी। अनंगपाल ने थोड़ी सी सेना इकट्ठी कर ली और अचानक ही दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक तो रिश्ते में वे उनके नाना लगते थे और दूसरा उन्होंने ही इतना बड़ा राज्य पृथ्वीराज को दिया था, इसीलिए उन्होंने कैमास से सलाह करके किले का दरवाजा बंद करवा दिया और केवल आत्मरक्षा करते रहे। लाचार अनंगपाल को वापस लौट जाना पड़ा। शहाबुद्दीन ने इस अवसर को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उपयुक्त समझा और हरिद्वार में दूत भेजकर बहुत लालच देकर अनंगपाल को अपने पक्ष में कर लिया। अनंगपाल पर बुढ़ापे ने अपना अधिकार जमाना शुरू ही कर दिया था। बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। शहाबुद्दीन के चक्कर में आकर उन्होंने उसकी सेना की सहायता से फिर से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस बार यवन शत्रु को साथ में लाया देखकर पृथ्वीराज शांत नहीं रह सके। उन्होंने अनंगपाल का तो ध्यान छोड़ ही दिया, पर मोहम्मद गौरी को दंड देना जरूरी समझकर किले का दरवाजा खुलवाकर उस पर आक्रमण कर दिया। इस बार गौरी का सेनापति उसका प्रधानमंत्री तातार खान था। पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों को अनंगपाल को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दे दी। भयानक युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी के वीर सरदार मारूफ खां, खुरासान खां एवं तातार खां आदि योद्धाओं ने अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। वे इस तरह राजपूत सेना पर टूट पड़े जिस तरह भेड़ों के झुंड पर शेर टूट पड़ता है, परंतु जिन्हें उन लोगों ने भेड़ समझ रखा था वे वास्तव में भेड़ नहीं थे, उन सब ने इस खूबसूरती से पलटवार किया कि शत्रु अपनी शान भूल गए। लड़ते लड़ते दोनों ही सेना वीरता दिखाने में मगन हो गई। परंतु अभी भारत पर यवनों का अधिकार होने में कुछ देरी थी, इसीलिए मोहम्मद गौरी की सेना को हार जाना पड़ा। चामुंडराय ने शहाबुद्दीन को पकड़ लिया तथा अनंगपाल भी पकड़कर सम्मान पूर्वक किले में पहुंचाए गए। पृथ्वीराज ने सब कामों से निश्चिंत होकर शहाबुद्दीन को अपने सामने लाने की आज्ञा दी। कैमास अपने साथ उसे पृथ्वीराज के पास ले आए। पृथ्वीराज ने उसे फिर बहुत समझाकर और कुछ धन लेकर छोड़ दिया। अनंगपाल एक साल दिल्ली में रहे। अंत में उनके साथियों ने उन्हें बहुत समझाया कि आप किस झंझट में पड़कर अपने हाथों से अपने मान यश तथा राज्य का नाश कर रहे हैं। यदि राज्य करने की ही इच्छा थी तो पहले ही उसका प्रबंध करते और अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को गद्दी दे देते। अनंगपाल भी अपने काम पर बहुत शर्मिंदा हो गए, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में रहना उचित ना समझा और फिर बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। पृथ्वीराज खुद उन्हें हरिद्वार तक बहुत आदर से पहुंचाए। इस समय पृथ्वीराज का बढ़ता हुआ प्रताप देखकर बहुत से राजा शरणागत हो रहे थे। इनमें ही दक्षिण प्रांत के भी कई राजा थे। इन सब ने मिलकर कर्नाटकी नाम की एक सुंदर कन्या पृथ्वीराज को अर्पण की। वह कर्नाटकी भी एक अनर्थ की जड़ ही थी। इसने भी भारत में विद्वेष फैलाने में कम सहायता नहीं पहुंचाई और इसके द्वारा पृथ्वीराज के घर में भी फूट रूपी जहर का बीज बोया जा चुका था। पहली बार पृथ्वीराज ने यही गलती की थी, उसे अपने महल में स्थान दे दिया। यह घटना बरदाई ने इस ढंग से कही है कि पृथ्वीराज की वीरता का समाचार सुनकर भारत के दक्षिण प्रांत के राजा उससे बहुत डरने लगे थे। मणि माणिक तो सभी उपहार में देते थे, परंतु उन्होंने आपस में सलाह करके विद्वेष फैलाने वाली यह कर्नाटकी नाम की एक रूपवती, गाने में निपुण तथा विलक्षण हाव भाव से संपन्न रमणी पृथ्वीराज को अर्पण की। अभी कर्नाटकी की उम्र कम थी, इसीलिए पृथ्वीराज ने उसे कल्हण नामक एक सुदक्ष नट को सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि उसे गाने की उच्च शिक्षा दी जाए। वैश्या की पुत्री होने के कारण कर्नाटकी इन विषयों को खुद भी कुछ न कुछ समझती थी। दक्ष नटा की शिक्षा प्राप्त होने के कारण वह बहुत जल्दी इन विषयों में पारंगत हो गई। अवसर देखकर फिर एक दिन कल्हण ने उसे पृथ्वीराज को वापस सौंप दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज ने उसके नव यौवना अवस्था को देखकर उसे अपने महल में रख लिया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।